एकदम से रूप कहने लगा, मौसी और कुछ नहीं, मेरे साथी की गेंद थी और मेरे हाथ से तुम्हारे आंगन में चली आई। जब गेंद के ऊपर विवाद हो सकता, मौसी मुझे गेंद दे दो। चंद्रमुखी खड़ी हो गई, रूप को गेंद दिखाई, यही गेंद है? हाँ मौसी यही है, लेकिन जरा मेरे हाथ में गेंद देखो। रूप ने निगाह करके गेंद को देखा, ये गेंद एक है? हाँ मौसी एक ही है। चंद्रमुखी बोली, अरे मेरे प्राण आधार बनो भरतार, कैसे अति झेले दो गेंद मेरी हाथ में के जल बिछेल मेरे तड़प रही, कितनी मुसीबत सही है। अरे मुपसाई न जाती जुदाई, कपड़ा की है रूप, लेकिन यहां यौवन की गेंद। गेंद खेलो मेरे सजना, करो आराम से यौवन, पर चल करके सैया बने गो काम से जो बन। डप बोले यार को डप बोले, डप बोले डप बोले खेल तेरो, डप बोले डप बोले मंडारे ते धपू बोले।
दोस्तों जो इतने वचन सुने
और जो एक कुफर सुना एकदम से रूप का कलेजा धक्के रह गया और रूप आंखों में आंसू भर के अपनी मौसी की तरफ देखने लगा। क्या बोला? हम बेटा तू मात पटक दे हाथ जे बचन उचारे सुन सुन के तेरे बैनरे भय घाय जिगिर में भारे। मौसी पागल हो गई तुम, तुमने कहा तू नशा कर दिया गेंदे तो मेरी सोती रही आप गजब करे भारे गजब करे भारे। अरे मैया का भाई पागल लेके धरती और अंबर भारे मेरे। एकदम से रूप रो करके कहने लगा मैया अरे मैं तेरा पुत्र हूं और अपने बेटा के साथ में पाप की भावना बनाना मां तुम्हें जनाब शोभा नहीं देता। एकदम से कहने लगी रूप बहुत भोले नजर आ रहे हो और क्या बोली है दोस्तों। एकदम से ये औरत आग बबूला और कहने लगी तुझे मेरी कन के तो ज्यादा बोल सनम सुख मगर बेदरस दिल की तो गिरे खोल सनम मेरे जोबन के जबहरात का कर बोल सनम मेरे जोबन के जबहरात का कर बोल सनम बोल सनम बोल सनम बोल सनम जोहरी बन के है कांटे पैसे तोल सनम बोली देखो मेरा यौवन भमर ये गुंजार रहा कटीला डंक नस नस में मेरे मार रहा हर तरह जान मन ये कर मुझे बेदार रहा हर हंसे मेरा क्यों कर रहा इंकार रहा और क्या बोली रूप चित्र खाता है काम कम कलेजे पे संजा जाता है कोई दम तमाम काम हुआ जाता है निगोड़े निर्दयी तुझको न तरसवाता है तुझे मेरी कसम हंस के तो जरा बोल सनम मेरे जो बन के जब रात तक कलेजे से लगा लो रूप। रूप कहने लगा माँ तुम्हें भगवान का खौफ नहीं है जाओ बाहर में जाए गेंद और भक्त को एकदम से रूप भागा कोई झपट करके क्या किया चक्रवर्ती ने एकदम से रूप की कलाई और कलाई लगो छुड़ान रे उमर दी जागी मारी ओ चंद्रमुखी के हाथ में पड़ गई पीटा योग कटाई फेंटा कटारी अपनी मौसी के हाथों में छोड़ी भाग करके दरवाजे पर आ गया। जो रूप दरवाजे पर सब लड़के कहने लगे गेंद कहने लगे गेंद गई बाहर में चलो खेल बंद। इधर रानी चंद्रमुखी अब तो हाथ मिलने लगी कि अब तो क्या हुआ गजब हो गया बांदी से कहा कि ओरी बांदी अब तू मेरी मदद कर अन्यथा चौघरिया का चक्कर है, क्योंकि वो अपने बाप से थोड़ी भी बात कहेगा तो निर्दयी मुझे मार देगा। बांदी कहने लगी आप मेरी सरकार हैं, जो भी आप बताएंगे मैं हाँ में हाँ करूंगी। तो जवाब दिया ठीक है। और दोस्तों उसी समय ये औरत उस बेचारे बिना मैया के लाल को मरवाने के लिए त्रिया चरित्र रचने लगी। त्रिया चरित्र, क्या त्रिया चरित्र रचा इस औरत ने, बात और बताऊं। राजा बनिया पावक पानी, बेस्या बंदर पर नारी है, आधार चक्कर में मत आइयो धोखेदारी की यारी है। आधार चक्कर में मत आइयो धोखेदारी की यारी है। और एक बात बताऊं, झूठी पत्तल है इस पर कुत्ता ललचाते हैं, पर नारी वो नागिन है जाई पे खून हो जाते हैं। पर नारी वो नागिन है इस पे खून हो जाते हैं। पराई औरत के समान और कोई नागिन नहीं है, बड़े बड़े महारथी नागिनियों डस लिए। देखिए उस बच्चे को डसने के लिए इसने त्रिया चरित्र रचा, क्या किया, यहां क्रोध रिस खाई एकदम हाई पजलियाई होली, जनमीज की कर ले लाल रे के गाल तो मल लई होली। क्रोध में आकर के इसके शरीर में होली पजल गई। मैंने कहा ना चोट खाई भाई नागिन और धोखा खाई भाई औरत को भगवान भी नहीं मना सकता। इस औरत ने अपने गाल मींज मींज के लाल कर लिए और खटिया पे नीचे जमीन पे गिर गई। चोली चुनर फाल ली, चूड़ी चटकाए ली, टूंक टूंक साड़ी के कर ले और अरे त्याग दई फूलन की सैया, अरे तज दई फूलन की सैया सैया गजब भाव सैया, और धरती पे कर लईए रे बिछैया, जिस समय आए हैं तो दोस्तों हालत देख करके घबरा गए, वो कहने लगे प्रिय क्या बात है, आज इस तरह से परेशान सी नजर क्यों आ रही हो। दोस्तों सोई के औरत उठ के बैठ गई और क्या बोली, महाराज हां खुल के बताओ बात क्या है, कहने लगी महाराजा मैं मर जाऊं। क्यों? मर जाऊं विष खाए जीवन और जगत धिक्कार हमारो, और मेरी गई लिहाज भाओ ऐसो जुलमानो थारो। कहने लगी महाराज अब मैं किसी मतलब की ना रही। तुम्हारे लला ने गजब कर दिया, एकदम से कहने लगा चंद्रसेन क्या बात कर रही हो? जवाब दिया हाँ तुम्हारे बेटा रूप ने गजब कर दिया। भैया क्या किया? एकदम से कहने लगी महाराज हमें जब बताओ अपने लिए लाए थे कि अपने लला के लिए? मतलब कहने लगी सुनो नांगन आज तो आए के आगे पलंग पे मोई दबाओ। मेरे गाल दाग अब देखो सैया जी बरबाने खाओ। महाराज बाद सो पापी तू तो है और पकड़ पलंग धर्म सब मेरो लूटो है। मेरी उठी पेट में आग प्राण ने मेरे कढ़ रही, मेरी उठी पेट में उठ जानी नहीं मेरी कढ़ रही है। सैना उठ पेट में उठ प्राण नहीं मेरे कढ़ रहे हैं। आंखों में आंसू भर के कहने लगी महाराज तुम्हारे बेटा ने मेरे सत्यत्व को नष्ट कर दिया, अब मैं किसी मतलब की ना रही। एकदम से चंद्रसेन कहने लगे खामत पगली, मेरे महात्मा जैसे बेटा को गंगा जल में पानी में लाने लगी। मेरा बेटा रूप इतना सीधा साधा है कि जब से वो स्कूल में गया है आज दिन तक सारे गाँव में कोई शिकायत नहीं सुनी जा रही, और तू बकवाद कर रही है। बदन दिखाती शर्म नहीं आती है, और सुन के तेरे बचन हमारी भक भकाती छाती है। और ही कमीनी, मेरा बेटा रूप कितना सीधा साधा महात्मा, और तू उसके बारे में ऐसी भावना बना रही है। एकदम से आंखें में आंसू कहने लगी महाराज सच्चे आप बेटा सच्चो तारीफ करो जिसकी है, और आंख खोल के देखो ये बेटा कटार किसकी है। घोल पीऊंगी बात हो गई गजब की, प्राणनाथ मेरे सजन में तुम्हारे नहीं रही मतलब की। जो फेंटा कटार को देखा चंद्रसेन ने होश उड़ गए, कानों से हवाइयां सी घूमने लगी, पैरों के नीचे धरती खिसक गई। चंद्रसेन कहने लगे एक बात बताओ, अब मैं समझ गया कि सीधा साधा पौनिया नाग बन गया और हमारी रानी ने वो आस्तीन का सांप पैदा किया। तुम चिंता न करो उसे वो सजा मिलेगी कि दूसरे देखने वालों की रूथर रह जाएगी। दोस्तों औरत ने अपना रंग चढ़ा दिया, उसी समय ये पहुंच गया दरबार में और एकदम हुक्म दिया कि मेरे बेटा रूप को हमारे सामने पेश किया जाए। दोस्तों उसी समय रूप आ गया, और जिस समय रूप आया और आते आते उसने पिता को आदाब बजाया। लेकिन राजा चंद्रसेन ने उसी वक्त अपनी पीठ को फेर लिया, कहने लगा कौन खता बाबुल भाई जो नहीं लेत प्रणाम, मैया मेरी चल बसी मुँह पर रूठ गए हैं। हम पर तो भगवान ही रूठा है। एकदम से आंखों में खून के कतरे आ गए और चंद्रसेन बोले तेने मेरी रूप सब इज्जत दई बिगाड़ी, रात महल में क्यों गए ओ पापी बदकार। अरे सुन पापी बदकार दे बादल फारी गजब तुन कियो, तेरे कर्मन की कर के याद रे भावत रहो फिरो अरे रूप तो सुंदर हतो, अरे कहे तू घटो कापियो हियो कापियो हियो कापियो हियो, मौसी के संग में मोहब्बत दो गला कालो तू कियो, अरे सुन के अरे राजा की अरे बानी अरे बानी बानी बानी। जके हुई औरे पेट में भैया पानी, बड़े चंद्रसेन कहने लगे उरे इस तरह की जवानी तुझे थी तो तू हमसे कहता मैं तेरी शादी करवा देता। क्या मोह काला करने को मौसी मिली मुझे ये बता दे पापी, मौसी और मैया में कितना भेद है। रूप कहने लगा पिताजी मौसी के प्रति बुरी भावना करना तो बहुत दूर है, सोचना भी पाप है। एकदम से जवाब दिया मैं तेरी सपाई नहीं चाहता। सिपाहियों आज तीन के सांप को फांसी लगा दो। दोस्तों जो फांसी पे नंबर आया पिता धीर सिंह को पता लगा कि मेरा भतीजा फांसी पर जा रहा है, भागता हुआ आया और दरबार में हाँफ करके खड़ा हो गया। भैया हाँ ये ज्येष्ठ पुत्र को ये फांसी के तख्ते पे खड़ा करने का इरादा क्या है? एकदम से कहने लगा है चंद्रसेन धीर सिंह भैया तुम बीच में कदा, जब पापी ने वो कर्म किया है जो हमारे दादे परदादे ने ही किया। एकदम से धीर सिंह कहने लगा भैया उस दिन की याद करो जब भाभी ने दोनों बच्चों की कलाई मेरे हाथ में दी थी तो तुमसे कोई शर्त हुई थी, याद है? चंद्रसेन कहने लगा हमें कुछ शर्त याद नहीं, बताओ कौन शर्त की थी? कहने लगा शर्त ये की थी गलती बेटा करेंगे सजा भोगे हम गलती बेटा करेंगे। बदले फांसी पे चढ़ेंगे अरे हम जग बदले हाय फांसी चढ़ेंगे हम गलती बेटा करेंगे। फिर गलती इन्होंने की है। तो तुमने मुझे वचन दिया था कि रूप और बसंत में कोई गलती करेगा तो मुझे सजा मिलेगी, इसलिए भैया फांसी पर मैं जाऊंगा। लेकिन नेक रुक जाओ, हमें यह रूप को पूछना है कि हकीकत क्या है। और भक्तों धीर सिंह उसी समय रूप को एकांत में लेकर के कहने लगे, बेटा मौसी के आंगन में गए थे। रूप कहने लगा, हाँ चाचा गेंद गिर गई थी। धीर सिंह कहने लगा, मैंने एक दिन तुम्हें संकेत किया था कि भूल करके मौसी के आंगन में मत जाना। रूप कहने लगा, हमसे गलती हो गई, लेकिन मैं निर्दोष हूं चाचा। इतना कह करके दोस्तों आ रूप जो है चाचा के पैरों पर गिर पड़ा। मो चाचा करियो माँ पुरे के भूल तो हुई आई भागी। मो चाचा करियो माँ पुरे मत भूल हुई आई भागी। सुनकर बेटा के बैन ले के बढ़न लगी बीमारी। महाराज धीर से कहने लगो, धुदलाई और मेरे जीते जी बेटा को फांसी दिए लगाई। देने वाला फांसी आवे अब बढ़ के और पी जाऊंगा खून छाती पे चढ़ के। मेरे लाल अरे तू मत मन में घबराई, पूत मेरे मत मन में घबराए। और रूप कुले के संग धीर महलन में पहुंचे आए। कहने लगा धीर सिंह, धीर सिंह जिस समय जिस महल में दरबार लगा हुआ पहुंचा, चंद्रसेन कहने लगा, बोलिए। आंखों में आंसू भर के धीर सिंह कहने लगा, ओ भैया सुन बेन, मान ले केहन बात यार मेरी। और बेटा है निर्दोष रे के बुद्धि पकड़ ले। धीर सिंह कहने लगा, भैया रूप बिल्कुल निर्दोष है और मैंने इसे हकीकत पूछ ली है। तुम्हारी औरत में खोट है, थोड़ा दिमाग दुरुस्त रखो। नारी के जाल में आकर के अपनी औलाद का कत्ल कराना ये बाप का धर्म नहीं। एकदम से कहने लगा, चंद्रसेन धीर सिंह तुम आगे से हट जाओ, हमारे इरादे को कोई बदल नहीं सकता और कोई ऐसा नहीं है जो इस कमीन को फांसी से बचा सके। धीर सिंह कहने लगा, भाई साहब मैं जा रहा हूं लेकिन तुम्हें एक वचन दे जा रहा हूं, मेरे जीते से तुमको फांसी नहीं होगी। ठीक है चला जा। धीर सिंह तो वहां से चला गया। एकदम हुक्म दे दिया, लगा दो तो कमीन को फांसी लगाओ। हाथ जोड़ के रूप कहने लगा, पिताजी जो चाहो सो कीजिए, पिता हमारो आज जला दूं पे मोई मत मरबैयो महाराज। पिताजी हमें जल्लादों पे न मरवा, जल्लाद पे मरवाई मत मारो पिता, ने जो हाथ है इनकी सकल को देख कर थर थर कपत मेरो गात है। नहीं उजर मुझको हुक्म से बेशक कढ़ाओ नैन है, मत रहम तुम मेरा करो मौसी की कर दो कहने। रूप कहने लगा पिताजी मरवाओ तो जल्लादों पे नहीं तुम अपने हाथों से मारो। जल एकदम से कहने लगे ओरे कमीन तेरे जैसे नीच को मैं अपने हाथों से मार भी नहीं सकता। ले जाओ मेरे मुंह की तरफ सिपाहियों क्या देख रहे हो। अंदर कांप करके रूप को लेकर के चले। इधर तो रूप के हाथ पीछे बंधे हैं रूप को लिए हुए सिपाही जा रहे हैं। इधर बसंत जो है अपने भैया के इंतजार कर रहा था। जो बसंत ने देखा रूप को सिपाहियों के साथ एकदम से बसंत भाग करके पहुंचा और कहने लगा भैया क्या कारण है ये सिपाही तुम्हें कहां लिए जा रहे। आंखों में आंसू भर के कहने लगा भैया मत पूछो कहानी बसंत भैया मत पूछो कहानी। मत पूछो कहानी बसंत भैया मत पूछो कहानी बसंत भैया बसंत भैया। दुश्मन बन गई बागेंद और मोची भैया मत पूछो कहानी बसंत भैया मत पूछो कहानी। इतनी बात रे सुनी भैया की बसंत गौरे है लगा खाने आगे बढ़ के ले आज भैया ने भैया को छाती जलो है लगा पूरी कहानी रोय रोय के रूप ने छोटे भैया को चाहिए उनके कहानी छाती बच फट गई रूप कहने लगा भैया अब हम तुम्हें क्या बताएं गेंद और मौसी माँ ये दोनों दुश्मन बन गए और जो पूरी कहानी सुनाई किस तरह मौसी ने हमारे ऊपर दोषारोपण किया है। एकदम से बसंत कहने लगा ठहर जाओ सिपाहियों मेरी एक आरजू मान लो कि भैया को लेकर पिताजी के सामने चलो अभी बाप से लौटा लाना। सिपाहियों को भी थोड़ा तरस आया तो बसंत के कहने पर रूप को लेकर के बाप से लौटे। जो चंद्रसेन ने देखा तो पूछा क्यों लौटे हो अरे इसे वापस क्यों ले आए। कहने लगे सिपाही हम तो नहीं लाए पर इसे बसंत हाई ले आओ छोटे बेटा को देख रे के चंद्र से मिल जाओ महाराज बचन ने पुनः फरमाओ है और वो बेटा बतला लौट जाए क्यों ले आओ है लाला रे कालो नाम देखो आओ है फरुखी जो है कमीन मार मेरे बेटा रे नांग पोनिया मोको बन गयो है फरुखी जो है झपके दान मार मेरे बेटा रे नांग पोनिया है। चंद्रसेन कहने लगा बसंत तुम इस काले नांग को क्यों लौटा के लाए। एकदम से आंखों में आंसू भर के बसंत कहने लगा पिताजी
सुन बचन पिता के तब छोटे ने ऐसे गिरा उचारी है और मौसी ने हाय हाय बाबुल सब दई है अकल बिगारी है Thank you. भी है संतोष भी है जो पिता आप है मेरे हैं। दरबार विस्तारो समझ गयो पर ये औरत के तेरे हैं। जैसा तुम भैया समझ रहे बसंत बोला ऐसो नहीं भ्रात हमारो है। बाबुल भगवान को खौफ करो जे हुक्म करो जो भारो है।
बसंत कहने लगा पिताजी तुम्हारी बुद्धि एक नारी ने बिगाड़ी। मेरा ऐसा भैया नहीं है, भगवान का खौफ करो थोड़ा। एकदम से आंखों में खून उतर आया और कहने लगा अच्छा तू हमें उपदेश देने आया है, हम समझ गए उसी नागिन से तू पैदा है। जला दो इन दोनों को, फांसी लगा दो। जो दोनों को फांसी का दे तू अधिक सुना दे भैया। हाँ जब बसंत के भी दोनों हाथ पीछे बांध लिया, बसंत को बंधा हुआ देखा
तो धीर सिंह ने जर के भैया गिराया। महाराज लगाए रहे इसको भी फांसी आप और बेटा बसंत ने है कोन को मार के धर दो बाप। तू अब कोन के घर में घूमो कोन की चटलूंगी ये है किनके घर में दबो के किनकी चटलूंगी ये है कोन के घर में कोन की चटलूंगी
धीर सिंह कहने लगा ठीक है तुम रूप को फांसी इसलिए दे रहे हो इसने मौसी के साथ में दुष्कर्म किया, लेकिन जब छोटे ने किसका भाव मार दिया कौन के सत को डिगा दिया। एकदम से जवाब दिया धीर सिंह तुम बहुत ज्यादा हमदर्द बनते हो इन दोनों को, लेकिन तुम्हारी हमदर्दी यहाँ काम नहीं करेगी, मेरे हुक्म को कोई टालने वाला पैदा नहीं हुआ। धीर सिंह कहने लगा तो मैं तुम्हें और बता रहा हूँ कि इनको मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अच्छा सिपाहियों जाओ जल्दी जख्मीन को चढ़ा दो दार पर, जंगल में ले जाकर इन दोनों की आंखें और कलेजे निकाल कर हमें लाकर दिखाओ। दोस्तों जल्लादों ने चल दिया दोनों बच्चों को लेकर। धीर सिंह वहां से चला गया अलग होकर। इधर जंगल में पहुंचे एक वृक्ष के नीचे इनको फांसी लगाने का विचार बना रहे हैं, लेकिन कहने लगे पहले ने थोड़ा एक बार बेहोश भी कर दो। ये मारपीट करने लगे और तब तक धीर सिंह ने क्या किया
ये दोनों बच्चा भैया रे कहने न तो अपने महाराज दिए जल्लाद धरन को पठार बोला तो भूखा लगे दुष्ट जब दरे धरन भरे काऊ जानवर भूखा मारे काऊ में लात दे दुखद नाथी
शेर की खाल ओढ़कर और सिपाहियों को मार मार के जमीन पर गिरा दिया और दोनों बच्चे उसी वक्त वक्त छूट गए और वो अलग खड़े हो गए। ¿Qué सिपाहियों ने जाकर के कहा कि महाराज एक भयंकर बला कूद पड़ी, मार मार के कई सिपाहियों का अंत कर दिया और रूप और बसंत दोनों बच गए। तो राजा के दिमाग में झटका लगा, और कोई नहीं है, मेरा भाई धीर सिंह है, लेकिन देखेंगे। इधर धीर सिंह अपने दोनों भतीजों को छाती से लगा के बोला, बेटा अब ये नगर, ये घर, ये परिवार खतरा से खाली नहीं है, चलो कहीं बाहर मजदूरी मेहनत करके तुम्हें पालूंगा। देखिए दोस्तों, धीर सिंह अपने दोनों बच्चों को लेकर चला।
अरे धीर सिंह जी चल भाए संग चल रहे दोनों, लाल रे संग चल रहे दोनों, कहां जात नहीं पता है।
ये उन्हें कोई पता नहीं कि उनकी मंजिल कहां तक है।
होश है बेटन को अंग में भर करके, बेटन को अंग में अरे पिया बान में जा रहे हैं, अब देश की दुपहरी लपट चले भैया, देश की दुपहरी लूह चले भैया, देश की दुपहरी गले तो सूख गो, हिचकी सी बनी रही बेटन की, हिचकी सी भरी रही एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, तब बेटा बोले चाचा दे भैया लाला बोले,
भयंकर गेट की लपट चल रही है, बच्चों के चेहरा काले पड़ रहे हैं। एक वृक्ष के नीचे धीर सिंह अपने दोनों भतीजों को लेकर बैठ गए। तो रूप कहने लगा, चाचा यहाँ कहीं पानी का इंतजाम नहीं है, बहुत जोर प्यास लगी। धीर सिंह कहने लगा, बेटा देखो वो पक्षी जो उड़ रहे हैं, शायद वहाँ कोई सरोवर या तालाब होगा, एक जंगल है चारों तरफ, तुम दोनों यहाँ बैठे रहो तो मैं पानी का इंतजाम करके लाऊं। कहने लगे, चाचा पानी जरूर पिला दो। दोस्तों धीर सिंह पानी पिलाने के लिए पानी लेने को चला, वो तो निकल चुका था दूर, और तब से ये गजब हो गया। क्या
एक रूप बसंत दोनों बैठे हैं, चढ़ रहो बदन में जाड़ो है, तब तक झाड़ी में से हाय अरे शेर तो धर के सहारो है। सुन के दहाड़ू सुनना हर की बेटन के छक्का छूट गए, मानो जिंदगी की जो नित थी जंगल में दोनों टूट गए। धनकार सहारा सी मिल गई है, दोनों को मुसीबत में जाग गए, डर के मारे बसंत और रूप अब वृक्ष छोड़ के भाग गए। दोनों पीछे मुड़कर देखे और तोर भी अति तूफानी है, ये धीर सिंह को पता नहीं वो भरन तो गए हैं पानी है।
चीत्कार को सुनकर के बसंत और रूप ने दोनों ने भाग दिया,
विपरीत दशा की तरफ भागे हैं। अगर अनुकूल दशा में भागते तो चाचा के दर्शन हो जाते। इधर दोनों बच्चे बराबर भागते हुए जा रहे हैं, सूर्य अस्त होने को आ रहा है। धीर सिंह जब पानी लेकर के आए तो उस वृक्ष के नीचे दोनों कुमार नहीं, होश बिगड़ गए धीर सिंह के। बेटा रूप, बेटा बसंत, तुम कहाँ हो?
क्यों छोड़ गए चाचा को निर्मोही, क्यों छोड़ के चले गए निर्मोही, क्यों छोड़ के चले गए? तुम्हारे पिछेला रूठिया भाई आंगन में पड़ी गई, दूध में खटाई आंगन में पड़ गई। भागे चाचा को अब राठौर जा चाचा को, न कोई क्यों छोड़ के चले गए निर्मोही, क्यों छोड़ के चले गए?
रोने लगा धीर सिंह, तुम्हारे पीछे भैया से भी हमने दुश्मनी मोल ले ली, लेकिन तुम क्यों चले गए नहीं मालूम है चाचा को, कि शेर के डर के मारे मार तुम बच्चे भाग गए।
कहां पर ढूंढूं, कहां पर तलाशूं, कहां पर ढूंढूं तुम्हें, कहां पर तलाशूं, कहां पर तलाशूं? मेरे बेटन को पता, मेरे बेटन को पता, न तेरा कोई क्यों छोड़ के चले गए निर्मोही, क्यों छोड़ के चले गए?
आधार जब विपतिया में न कोई, क्यों छोड़ के चले गए निर्मोही, क्यों छोड़ के चले गए?
धीर सिंह वृक्ष के नीचे खड़े हुए अपनी किस्मत को कोस रहे हो, कह रहे लाल क्या तुम्हें मेरे ऊपर भी संदेह हो गया, तुम दोनों कहां चले गए? इधर भक्तों धीरे धीरे अंधेरी रात घिरने लगी। जब चारों तरफ अंधेरा छाने लगा, रूप और बसंत वहां से कोसों दूर निकल गए थे जंगल में। रूप कहने लगा, भैया इस बियाबान जंगल में कहीं गांव तो है नहीं जहां शरण मिल जाए। अब जब वृक्ष के नीचे सोना है, ऐसा करो भैया, बसंत तुम सो जाओ, हम पहरा देंगे, कोई जानवर ना आ जाए। बसंत कहने लगा, तुम बड़े हो, तुम पहले सो जाओ। आज बसंत सो गया और रूप पहरा देने लगा। तब तक क्या हुआ, आकाशवाणी हुई, अंतरिक्ष से आवाज आई,
जब पेड़ पे लटके फल जो देखत में अति लग रहे प्यारे, जो बड़े फल को लिए खाई रे के प्रभु के सहारे, महाराज अब फौरन राजा बन जाएगो, और छोटे फल को खाई कष्ट के राजा बन जाएगो। महाराज रूप ने सुनी जब बानी, और देख बसंत को रूप न भेजन दिल अंदर मानी, अरे जगाए लो छोटे भैया को, रे जगाए लो छोटे भैया को, और धीरे धीरे कान में यार समझाए लो छैया को, फलाए कोनो लटके और तुम तो देखो हम तो तोड़ ले मार के झटके, के फल बन दोनों तोड़ ले रे के फल बन, और दोनों हाथ में लेके अपने ओठ सिकोड़ ले बड़ो फल रूपन खाए लो है, और
तारू छोटो फल तो बसंतन भैया तुरंत जवाय लो है और होना हर बलवान के संत की लीला है न्यारी अवर मेरी जो बनवारी और होना हर बलवान खबर मेरी जो
याद रखना दोस्तों आकाशवाणी हुई के जो फल लटके हुए हैं बड़ा फल जो खा लेगा वो राजा बनेगा जल्दी और छोटे फल को खाएगा वो मुसीबत से के बाद राज पाएगा। रूप ने बसंत को जगा लिया और कहने लगे भैया ये आकाशवाणी हुई और झटका मार के दोनों फल तोड़ लिए। लेकिन जिस समय फल तोड़े तो वो आकाशवाणी का इतना ख्याल नहीं रहा, बड़ा फल रूप ने खा लिया किस्मत का खेल छोटा बसंत ने। आज दोनों बैठे हैं, फल खाने के बाद में बसंत के अंदर तीव्र प्यास जगी। भैया से कहने लगे भैया ये फल मुझे गर्म लगता है।
फल खाते खाते प्यासन भैया मोटो यदि सताओ
बसंत कहने लगा भैया ये फल की गर्मी इतनी तीक्ष्ण है कि मुझे प्यास सता रही है। एकदम जवाब दिया तो तुम यहां बैठो मैं पानी की तलाश में जाता हूं। रूप वहां से चला और इधर दोस्तों
आई गई बसंत को नींद सुनो मेरे भाई
देखिए
आई गई बसंत को नींद सुनो मेरे भाई ये झाड़ी से निकलो नांग ये झाड़ी से निकलो नांग लला लियो खाई झाड़ी से निकलो नांग
काले नाग ने डस लिया वसंत को।